हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति ने हौले से अपनी पलकें उठाईं, उसकी गुलाबी आंसुओं से भीगी आंखें देखकर अर्णव के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और वो कुछ परेशान व बेचैन हो गया। धृति के खामोश लब भड़भड़ाए और धीमी सी आवाज फिजाओं में गूंज उठी, अर्णव जी, मैं घर नहीं जाना चाहती। धृति के शब्द अर्णव के होश उड़ा गए। उसकी बात सुनकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसे पहले तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। कुछ पल फटी आंखों से अचंभित सा उसे देखता रहा, फिर हैरानगी से पूछ बैठा, क्यों? मैं आपको छोड़कर आ गई थी, इतने सालों तक आपसे दूर रही। दादा, दादी, मॉम, डैड, दीदी सब नाराज होंगे मुझसे। मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें? और अगर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि उनका इतना प्यार मिलने के बावजूद मैं उन्हें छोड़कर क्यों चली गई, आपको क्यों छोड़ दिया, तो क्या जवाब दूंगी मैं? धृति ने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए अपनी समस्या उसके सामने रख दी। चेहरे पर अब भी दुख, घबराहट, डर जैसे भाव मौजूद थे। अर्णव जो उसकी हालत देखकर परेशान और ना जाने के फैसले को सुनकर हैरान था, जब उसने धृति की बात सुनी तो चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। तुम्हें कुछ जवाब देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से सब जानते हैं। क्या मतलब? धृति आंखें बड़ी बड़ी किए कन्फ्यूज सी उसे देखने लगी। अर्णव की कही बात का मतलब शायद वो समझ नहीं सकी थी, इसलिए उलझन में थी। अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी, फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए हौले से मुस्कुरा दिया। मतलब ये मेरी जान कि तुम्हारे जाने की बात जब उन्हें बता चली तो मैंने उन्हें हमारे रिश्ते का पूरा सच बता दिया था, कि कैसे मैंने गलतफहमी में आकर तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया, तुम्हें टॉर्चर किया, और क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई। हाँ, बस वो शादी वाली रात की बात नहीं बताई, वरना मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाता। बाकी सारा सच उन्हें बता चुका हूँ मैं, इसलिए तुम्हें कुछ भी सोचकर घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्णव एकदम नॉर्मल था, जबकि थेकी उसकी ये बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गई थी। उसने फटी आंखों से उसे देखा और घबरा कर बोली, आपने ये सब क्यों बताया उन्हें? कितना प्यार करते थे सब आपसे, इतना विश्वास करते थे आप पर, उनकी भावनाओं को कितनी चोट पहुंची होगी, उनका विश्वास टूट गया होगा, कितना दिल दुखा होगा उनका। आपको ये नहीं करना चाहिए था, मैंने कहा भी था आपको कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दीजिएगा, फिर आपने खुद को उनकी नज़रों में क्यों गिरा लिया? धृति अर्णव पर नाराज़ हो रही थी, शायद उससे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी उसे। वो नाराज़ थी तो अर्णव के लिए, क्योंकि उसे अर्णव और उसके परिवार की फ़िक्र थी, और ये बात अर्णव भी समझ रहा था। उसने धृति की बेचैनी भरी निगाहों में झांकते हुए बेहद संजीदगी से जवाब दिया, ये ज़रूरी था धृति, और यही सही था। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे सबको सच बताने से मना किया था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि तुम्हें उनकी नज़रों में नहीं गिराना चाहता था। नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाए, मेरी पत्नी के चरित्र पर शक करे। पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत कर चुका था, जिसके लिए खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा था। तुम्हारा गुनहगार था और अपने गुनाहों को और नहीं बढ़ाना चाहता था, खुद की नज़रों में और नहीं गिर सकता था। तुम पत्नी थी मेरी और मेरी इज्जत तुमसे जुड़ी थी, जिस पर मैं आंच नहीं आने दे सकता था। मेरे परिवार ने तुम्हें दिल से स्वीकारा था, उनके दिल को नहीं दुखाना चाहता था। उन्होंने बहुत विश्वास किया था तुम पर, उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। फिर कल को अगर हम दोबारा मिलते तो उस झूठ के बाद वे कभी तुम्हें दोबारा स्वीकार नहीं करते। लेकिन मुझे तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी थी। वैसे भी झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, सच को कितनी ही परतों के पीछे क्यों ना छुपाओ, वो एक ना एक दिन बाहर आता ही है। इसलिए मैंने और झूठ बोलना ठीक नहीं समझा और उन्हें पूरा सच बता दिया। गुनहगार मैं था तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए थी। गलती मेरी थी तो सबकी नाराज़गी और गुस्सा तुम्हारे हिस्से क्यों आता? सच बताकर मैंने अपने गुनाह स्वीकार किए और उनकी दी सज़ा कबूल की। अर्णव अब भी बेहद शांत व संजीदा नजर आ रहा था, जबकि धृति बेहद परेशान और व्याकुल लग रही थी। अर्णव जैसे ही चुप हुआ, धृति ने बड़ी ही बेचैनी से सवाल किया, कैसी सज़ा? उस दिन सच जानने के बाद पहली बार मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया था, और शायद मैं डिजर्व भी करता था। तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसके बाद मुझे एक नहीं 100 थप्पड़ पड़ते, तब भी उन गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलती। दादा, दादी, डैड, दीदी सब मुझसे नाराज़ हो गए थे और उसी वक्त वापस चले गए थे। उसके बाद इतने सालों में ना कभी उनसे बात हुई, ना ही मुलाकात। जाते जाते दादाजी कहकर गए थे कि अब उन्हें अपनी शक्ल तब दिखाऊं जब मेरे साथ उनकी बहू हो, और मुझे माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी। तो मैंने उनकी दी सज़ा खामोशी से कबूल की। मतलब आप इतने सालों से अपने परिवार से दूर हैं, फिर भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? धृति शौक में थी, उसे तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके जाने के बाद वहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। माधुरी ने भी उसे कभी कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो इन सबसे पूरे तरह से अनजान थी। और अब जब अचानक ये हकीकत उसके सामने आई तो धृति की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही उससे छिन गई थी। वो हैरान थी और परेशान भी। अर्णव ने धृति के सवाल पर हौले से मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में जवाब दिया, वादा किया था ना तुमसे
तो कैसे तोड़ देता। तुम इतने सालों की बात कर रही हो, मुझे अगर सारी उम्र भी तुम्हारा इंतजार करना पड़ता तो मैं करता, वो भी बिना कोई चीटिंग किए, क्योंकि मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहता था, तुम्हारी माफ़ी पाना चाहता था, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी ये सज़ा एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर होगी और मुझे मेरी मोहब्बत वापस ज़रूर मिलेगी। और देख लो, मेरे सब्र का फल मेरे सामने है। आज तुम मेरे पास हो, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तो बाकी सब भी अब मुझे माफ़ कर देंगे और तुम्हारे साथ मुझे मेरा परिवार भी वापस मिल जाएगा। इसलिए अब दुखी या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो बुरा वक्त था, बीत गया, आगे सब अच्छा होगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान या दुखी मत हो, सब ठीक है, मैं खुश हूँ, और जो ठीक नहीं बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। अर्नव अब भी बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। धृति के शब्दों को जैसे किसी ने हर लिया था। वो समझ ही नहीं सकी कि ऐसे वक्त में उसे क्या कहना चाहिए। ये सोचकर उसका मन दुखी था कि 3 साल अर्नव ने बिना उसके उसके परिवार के अकेले कैसे बिताए होंगे, कितनी तकलीफ में रहा होगा वो। पर वहीं ये जानकर मन हर्षित भी था कि अर्नव उससे इतनी मोहब्बत करता है कि इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उससे किया वादा उसने पूरी ईमानदारी से निभाया। धृति के पास आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का अभाव था। वो कुछ पल भीगी पलकें उठाए खामोशी से अर्नव को तकती रही, फिर उसके सीने से लगते हुए अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कस के लपेट दिया। अर्नव के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने भी धृति को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके सर को चूमते हुए उसकी पीठ सहलाने लगा। दोनों ही खामोश थे। शायद उन्हें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनके अनकहे जज्बातों को उनकी धड़कनें बयां कर रही थीं और दिल उन धड़कनों की भाषा को बखूबी समझ भी रहा था। कुछ पल खामोशी से बीते थे। धृति अब काफ़ी हद तक शांत हो गई थी। अर्नव ने उसे खुद से दूर किया और एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बेहद मोहब्बत से सवाल किया, अब ठीक हो तुम? धृति ने सहमति में सर हिला दिया और मुंह बिचकाते हुए मायूसी भरे स्वर में बोली, पर मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप 3 साल तक मुझसे और अपने परिवार से दूर रहे। कितना मुश्किल रहा होगा वो वक्त आपके लिए, कितने तन्हा और अकेले पड़ गए होंगे आप। फिर भी आपने मुझसे किया अपना वादा निभाया, और जब किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया तब भी आपने हर मुमकिन कोशिश की मुझे मनाने की, पर मैं कभी आपकी स्थिति समझ ही नहीं सकी।
मैंने कभी ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि आप कैसे हैं। आप पहले ही मेरे वजह से इतना कुछ भुगत चुके थे। मैं आपको और तड़पाती रही, आपकी तकलीफ बढ़ाती रही, आपकी मोहब्बत को ठुकराकर आपको खुद से दूर करती रही, फिर भी आपने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की।
किस बात की शिकायत करता मैं तुमसे धृति? मैं गलत था, चाहे वजह जो भी रही हो, पर तुम्हारे साथ जो मैंने किया वो गलत था। हमारा कानून भी कहता है कि 10 गुनाहगार बच जाएं, पर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। पर तुम्हें सज़ा मिली। कुछ गलती तुम्हारी भी थी, पर मैं ज़्यादा गलत था और मैंने अपनी गलतियों की सज़ा भुगत ली। फिर तुमसे शिकायत क्यों करता? अर्नव ने संजीदगी से सवाल किया। फिर पल भर ठहरने के बाद उसने आगे कहना शुरू किया, वैसे भी जो था वो बीत गया। मैंने कहा था तुमसे कि अपने पास्ट को हम अब अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इफ़ेक्ट करने नहीं देंगे, इसलिए जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तो मैं खुश हूँ, इनफैक्ट तुम्हें वापस पाकर बहुत खुश हूँ। इसलिए अगर तुम्हें सोचना है तो इन बेकार की बातों के बजाय मेरे और हमारे रिश्ते के बारे में सोचो। और अभी तो तुम्हारे पास इसके बारे में भी सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ब्यूटिशियन का अपॉइंटमेंट लिया है और अभी तुम्हें यहाँ से निकलना है और लौटोगी सीधे रात को 8 बजे। आखिरी की बात कहते हुए अर्नव रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। वहीं धृति आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित सी उसे देखने लगी। आपने ये कब किया और क्यों? धृति, आज रात हमारी ऑफिशियल फर्स्ट डिनर डेट होगी, ये सब उसी की तैयारी है। अर्नव ने मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर धृति ने माथे पर बल डालते हुए उलझन भरे स्वर में कहा, शादी के इतने सालों बाद डेट पर कौन जाता है? सादा सा डिनर रख लेते, उसके लिए इतने तामझाम करने की क्या जरूरत है? अर्नव ने उसे अपने थोड़ा करीब किया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से बोला, ज़रूरत है धृति। मेरे एक्सीडेंट के बाद से तुमने खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, खुद को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, इसलिए मैंने ये अपॉइंटमेंट बुक की है। खुद को वक्त देना और अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। रही बात डेट की, तो वो भी ज़रूरी है। मैं सब शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, नॉर्मल कपल्स की तरह धीरे धीरे हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसलिए आज मेरे तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर डेट अरेंज किया जाएगा, जिसमें तुम्हारे लिए खास सरप्राइज भी होगा। और तुम इस बारे में अब न तो मुझसे कोई बहस करोगी और न ही कुछ पूछोगी। चलो अपना मूड ठीक करो और जाकर कपड़े बदलो, मैं छोड़ने चलूँगा तुम्हें। अर्नव फैसला सुना चुका था, बहस का कोई फायदा नहीं था, इसलिए धृति ने खामोशी से उसकी बात मान ली और अंदर चली गई। अर्नव वहीं खड़ा कुछ सोचते हुए मन ही मन मुस्कुरा उठा। टू बी कंटिन्यूड। स्पेशल डिनर डेट के लिए तैयार हो जाइए।